सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं जय उदरसेननाहो जेन महाकम्मपयडिपाहुडसेलो बुद्धिशिरेणोदरियो समप्योः फयन्तस। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। सातवीं पुस्तक में हम 66 पृष्ठ पर आ गए हैं। ये जीव एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय क्यों होता है, ऐसा प्रश्न था, तो उसमें बताया कि क्षयोपशमिक लब्धि के कारण, यानी वहां वो क्षयोपशमिक भाव घटित किया था मति ज्ञानावरण के ऊपर। एकेंद्रियों में स्पर्शनेन्द्रियावरण का क्षयोपशम भाव कैसे है उसको बताया था। तो क्षयोपशम में हमने क्या देखा था, कर्मों के क्षयोपशम में विशिष्ट कर्म के जो सर्वघाती स्पर्धक है उसका उदय का क्षय है, उदय नहीं होना परंतु सत्ता में पड़े रहना, उसको सत्वोपशम कहते हैं। या पहले हमने सीखा था वो सदअवस्था रूप उपशम ऐसा भी कहते हैं। और उदय तो देशघाती स्पर्धकों का होगा, ऐसे हमने एकेंद्रियों में मात्र स्पर्शनेन्द्रियावरण का ही क्षोपशम है, बाकी रसन इंद्रियावरण, घ्राण इंद्रियावरण वगैरह जो है उनका तो सर्वघाती का उदय है, इसलिए वे अन्य जो है ज्ञान उसका उनके उघाड़ नहीं पाया जाता है। हाँ, औदयिक अज्ञान, औदयिक भाव, सर्वघाती का उदय है ना, यानी उस संबंधी का ज्ञान बिल्कुल प्रकट नहीं है, पूरा ही आवरण है। सर्वघाती यानी पूरा घात। अभी रसनेन्द्रिय संबंधी सर्वघाती का उदय, इसका अर्थ क्या है, रसनेन्द्रिय संबंधी ज्ञान बिल्कुल नहीं है। एकेंद्रियों को एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान है, अन्य चार इंद्रियों संबंधी या मन संबंधी ज्ञान उनके बिल्कुल नहीं है, तो उन विशिष्ट ज्ञानावरण का सर्वघाती का उदय चल रहा है। बरोबर। अब यहाँ पांचों ही इंद्रियों वाले जीवों की बात होने के बाद शंकाकार नौ इंद्रियावरण के बारे में पूछ रहा है, नौ इंद्रिय ने मन, तो यहाँ शंका है 66 पृष्ठ पर नीचे वाली शंका। नौ इंद्रियावरण के क्षोभशम से उत्पन्न होने वाली नौ इंद्रिय उक्त पांच इंद्रियों से पृथकभूत ही है, यानी नौ इंद्रिय तो अन्य पांच इंद्रियों से तो भिन्न ही है। तो उसका समाधान, यदि ऐसा है तो वे इंद्रिय ज्ञान भी नहीं है और उनसे उत्पन्न होने वाला ज्ञान मति ज्ञान नहीं है। यदि नौ इंद्रिय को सर्वथा भिन्न ही मानेंगे या नौ इंद्रियावरण को मति ज्ञानावरण का भेद नहीं मानेंगे तो क्या आफत होगी, तो क्या आपत्ति आएगी, तो ये जो अन्य इंद्रिय ज्ञान भी इंद्रिय ज्ञान नहीं ठहरेगा, एक बात, क्योंकि वह मति ज्ञानावरण के क्षोभशम से नहीं उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मति ज्ञान के अभाव से मति ज्ञानावरण का भी अभाव हो जाएगा। ये तो एक एक न्याय से सिद्ध करते हैं, ये न्याय की भाषा होती है। मति ज्ञान नहीं है तो उसके आवरण वाला कर्म होने का भी सवाल ही नहीं है। इसलिए छहों इंद्रियों का क्षोभशम, मन को भी इंद्रिय कहा यहाँ, इसलिए छहों इंद्रिय लिए, छहों इंद्रियों का क्षोभशम अथवा उस क्षोभशम से उत्पन्न हुआ ज्ञान मति ज्ञान है। मति ज्ञान की परिभाषा हमने भी देखी थी, पांच इंद्रिय और मन, इनके निमित्त से वहाँ जो ज्ञान चलता है उसको मति ज्ञान कहा था, या दूसरी भाषा में इन्होंने यहाँ 6 इंद्रिय कहा, एक ही बात है, क्योंकि मन को भी 9 इंद्रिय कहा है, या इंद्रियों को करण कहते हैं तो मन को भी अंतःकरण कहते हैं, अंदर वाला करण, और उसका आवरण मति ज्ञानावरण है, ऐसा मानना चाहिए, अन्यथा मति ज्ञानावरण के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। यदि 9 इंद्रियावरण को मति ज्ञानावरण नहीं मानेंगे तो अन्य जो इंद्रियावरण है उनको भी मति ज्ञानावरण नहीं मानेंगे, ऐसा कहना है इनका। अब शंका, एकेंद्रियादि को यहाँ औदयिक चाहिए, औदारिक हुआ है, ऊपर देखो ओदयो भाव है ना, एइंद्रियादीनम ओदयो भावो, उसका ट्रांसलेशन यहाँ औदयिक चाहिए, एकेंद्रियादि को औदयिक भाव कहना चाहिए, ये शंकाकार की अभी शंका चल रही है, क्योंकि एकेंद्रिय जाति आदिक नाम कर्म के उदय से एकेंद्रियादिक भाव पाए जाते हैं। एकेंद्रिय क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उसके उत्तर में कहा था क्षयोपशमिक लब्धि से या क्षयोपशमिक भाव से एकेंद्रिय होते हैं, और उस पर मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम घटित करके बताया था। शंकाकार कहता है जो एकेंद्रिय जीव है उनके एकेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, इसलिए उसको औदयिक तो कहो, शंका ख्याल में आई ना। हाँ, यदि ऐसा न माना जाएगा तो सहयोगी और अयोगी जिनों के पंचेंद्रियपना नहीं बनेगा, क्या कहते हैं सहयोग, अभी पंचेंद्रिय किसे कहते हैं, तो जिनको पंचेंद्रिय संबंधी आवरण का क्षोभ समय उसको पंचेंद्रिय कहते हैं, ऐसा पहले आया था, इसलिए शंकाकार पूछते हैं कि सहयोगी जिन और अयोगी जिन वो पंचेंद्रिय है, यदि हम क्षयोपशम से ही पंचेंद्रियपना है ऐसा अगर कहेंगे तो सहयोगी और अयोगी को पंचेंद्रिय नहीं कह सकते। उसका कहना क्या है, जाति नाम कर्म के उदय से ही है एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीनद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय कहो, क्योंकि सहयोगी को भी हम पंचेंद्रिय कहते हैं, क्योंकि वहाँ पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का तो उदय है, परंतु इंद्रियावरण कर्मों का कोई क्षयोपशम नहीं है, उनके तो क्षायिक ज्ञान है ना, सभी ज्ञानावरण का उनका क्षय हो चुका है, इसलिए ज्ञानावरण संबंधी कोई भाव आप कैसे घटित कर सकते हो, ये उसका प्रश्न है। और सहयोगी अयोगी जिनों के पंचेंद्रियपने का अभाव होता नहीं है, क्योंकि सहयोगी और अयोगी जिनों को पंचेंद्रिय कहने में आता है, क्योंकि वैसा मानने पर पंचेंद्रिय जीवों की अपेक्षा समुद्घात पद के द्वारा लोक के असंख्यात बहुभागों में और सर्वलोक में जीव रहते हैं, इस सूत्र से विरोध आ जाएगा। पहले जब हमने क्षेत्र और स्पर्शन की बात सीखी थी धवला के पूर्व भागों में, तब वहां पूछा गया था कि पंचेंद्रिय जीव कहाँ रहते हैं, तुमने कहा जब स्वर्ग के जीव है, नरक के जीव है, तिर्यंच है, मनुष्य है, तो लोक के संख्यात विभाग, अथवा करके और ऑप्शन कौन सा है, असंख्यात बहुभाग, क्यों, प्रतर वाला जो समुद्घात है वो कौन करते हैं, तो सहयोगी करते हैं, वे पंचेंद्रिय है, इसलिए उनकी अपेक्षा लोक का बहुभाग या पूरा ही लोक, लोक पूरण समुद्घात में यहाँ लिखा ना, देखो उन्होंने कोट किया जो इन्वर्टेड में लिखा है ना कि पंचेंद्रिय जीव, ये एक पूर्व पहले हमने सूत्र इसको पढ़ा था, इसलिए सूत्र का रेफरेंस देके शंकाकार पूछ रहा है, पहले ही ये सूत्र आ चुका है, क्या क्या आया था, पंचेंद्रिय जीवों की अपेक्षा समुद्घात पद के द्वारा यानी केवली समुद्घात की अपेक्षा लोक के असंख्यात बहुभागों में, ये प्रतर वाला जो है वो असंख्यात बहुभाग हो जाता है, वातवले को छोड़कर है ना, हाँ। और सर्वलोक में, ये तो लोक पूर्ण समुदाय की अपेक्षा सर्वलोक में जीव रहते हैं, खाली एक अकेला जीव नहीं, क्योंकि एट अ टाइम समुद्घात का जो फैलाव है उसके 20 और समेटने वाले 20, अधिक से अधिक 40 हो सकते हैं सहयोगी केवली, समुद्घात करने वाले, एक एक समय वाले, दंड वाले, कपाट वाले, प्रतर वाले, इस तरह से। ये तो पहले हम देख चुके हैं। इस सूत्र से विरोध आ जाएगा। शंकाकार का कहना है सहयोगी और अयोगी पंचेंद्रिय जीव है, परंतु उनको मति ज्ञानावरण का क्षोभशम नहीं है। किसी भी ज्ञानावरण तो है ही नहीं, वो क्षायिक भाव चल रहा है। तो इसलिए पहले जो औदयिक भाव से, औदयिक भाव ने क्षोभशमिक भाव से एकेंद्रिय द्विंद्रिय जीव आदि होते हैं, ये जो आपने कथन किया है वो ठीक नहीं है। तो क्या होना चाहिए शंकाकार की मत के अनुसार? कि जाति नाम कर्म के उदय से वो होता है, ऐसा आप कहो, ऐसी शंका है। अब उसका समाधान करते हैं। समाधान, यहाँ उक्त शंका का परिहार करते हैं, यानी अभी उसको रूल आउट करते हैं, उसका खंडन करते हैं, उनका समाधान करते हैं। एकेंद्रियादिक जीवों का भाव औदयिक तो होता ही है, क्योंकि एकेंद्रिय आदि जाति चाहिए। आगे फिर आदि लिखा है, आगे का शब्द क्या है? वो दो बार आदि तो नहीं हो सकता है ना? तो एकेंद्रिय जाति आदि नाम कर्मों के उदय से उनकी उत्पत्ति देखी जाती है, और इसी से सहयोगी व अयोगी जिनों का पंचेंद्रियपना बन जाता है, और इस प्रकार वह जीव स्थान भी बन जाता है। जीव स्थान हमने देखे थे ना, वो जीव समास जो देखे थे अलग अलग, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय वगैरह। तो जीव समास की अपेक्षा तो सहयोगी और अयोगी को भी हमने पंचेंद्रिय कहा था, किंतु इस क्षुद्रक बंध खंड में, अभी हमारा जो खंड चल रहे ना, खुद्दा बंध द्वितीय खंड जो हम सातवीं पुस्तक देख रहे हैं, क्षुद्रक बंध, इस खंड में शुद्ध नय से अनिंद्रिय कहे जाने वाले सहयोगी और अयोगी जिनों के, शुद्ध नय से अनिंद्रिय ने इंद्रियों के द्वारा उनका व्यापार यानी जानने का कार्य नहीं चलता, इसलिए उनको अनिंद्रिय कहा है। केवल ज्ञानी है, वहां कोई इंद्रिय या प्रकाश या अन्य किसी का निमित्तपना बनता नहीं है, क्षायिक ज्ञान है ना उनके, उसको असहाय ज्ञान कहा है। हम असहाय किसको मानते हैं? कोई लूला है, बेसहाय, बेसहारा है, उसको असहाय मानते हैं। वैसे नहीं, किसी की सहायता की जिसको बिल्कुल जरूरी नहीं है, अपेक्षा नहीं है, कोई निमित्त नहीं बनता है, उसको असहाय यानी पूर्ण अपने आप में स्वाधीन ज्ञान है। तो ऐसे ये केवल ज्ञान है, तो उनमें ये अनिंद्रियपना है। तो ऐसे जो सहयोगी है और अयोगी है, उन जिनों के यदि पंचेंद्रियपना कहना है तो वह केवल व्यवहार नय से ही कहा जा सकता है, परंतु वहां इंद्रियों के द्वारा जानने का कार्य नहीं होता। वह इस प्रकार है, पांच जातियों में, जाति यानी एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, उसको जाति कहते हैं। तो पांच जातियों में जो क्रमशः पांच इंद्रिया संबद्ध है, क्रमशः कहा क्योंकि हमने एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक क्रम से बताया था। एकेंद्रिय को एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है, द्विंद्रिय को स्पर्शन रसना, उसी क्रम से वो बढ़ेगी, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय या कर्णेन्द्रिय। तो ये जो इंद्रिया संबद्ध है वे क्षायोपशमिक है ऐसा मानकर उपचार से पांचों जातियों को भी क्षायोपशमिक स्वीकार करके, क्या कहते हैं, क्षायोपशमिक किस पर घटित होता है? मति ज्ञानावरण पर, इंद्रियों की अपेक्षा से। इंद्रिय यानी यहाँ भाव इंद्रिय, ये शरीर की रचना को इंद्रिय नहीं कहा, भावेंद्रिय ने क्षायोपशमिक ज्ञान, क्षायोपशमिक भाव है वो। तो ये जो क्षायोपशमिक भाव घटित होता है इंद्रियावरण में, उसकी अपेक्षा उपचार से ये जाति को भी वो क्षौपशमिक भाव कहा ना, देखो फिर से क्या कहा, पांच जातियों में जो क्रमशः पांच इंद्रियां संबद्ध है, यानी एक एक जाति संबंधी वो एक एक दो या तीन ऐसी इंद्रियां संबद्ध है, उनके साथ वो उसके साथ होती है, और ये इंद्रिया कैसी है, क्षौपशमिक है। इंद्रिया यानी क्षौपशमिक ज्ञान को इंद्रिया कहा है, तो इंद्रिया क्षौपशमिक है। इसलिए उपचार से पांच जातियों को भी क्षौपशमिक स्वीकार किया है। जाति नाम कर्म को क्षौपशम, क्योंकि वो तो अघाती कर्म है, उसमें कोई क्षौपशम नहीं पाया जाता, परंतु जाति नाम कर्म के साथ विशिष्ट क्षौपशम पाया जाता है, एक इंद्रिय को एक इंद्रिय संबंधी वगैरह वगैरह, इसलिए उस जाति नाम कर्म को भी उपचार से क्षौपशमिक कहा। और ऐसा उपचार से सहयोगी और अयोगी जिनों के क्षयोपशमिक पंचेंद्रियपना सिद्ध हो जाता है, उन्हें जो क्षो पंचेंद्रियपना कहा है, वो पहले वो जाति नाम कर्म का तो अभी भी उदय है उनके, चौदहवें गुणस्थान तक मनुष्य गति का भी उदय है, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का भी उदय है, और पहले कैसे वो क्षोपशम उसमें विशिष्ट होता था पंचेंद्रिय जीवों को, इसलिए यहाँ भी उपचार से उनको क्षोपशम भाव या पंचेंद्रियपना घटित किया है। अथवा दूसरी पद्धति से बताते हैं, आवरण के क्षीण होने पर भी, ये कौन सा आवरण क्षीण हो गया, ज्ञान आवरण, क्षीण होना यानी यहाँ क्षय होना, ज्ञानावरण, पांचों ही ज्ञानावरण का क्षय हो जाता है बारहवें के अंत में, और तेरहवें के पहले समय से ही केवल ज्ञान उत्पत्ति होती है, उसको क्षायिक ज्ञान हम कहते हैं। तो आवरण के क्षीण होने पर भी, पंचेंद्रियों के क्षोपशम रूप होने पर, क्षोपशम से उत्पन्न और उपचार से क्षौपशमिक संज्ञा को प्राप्त बाह्य पंचेंद्रियों का अस्तित्व पाए जाने से, बाह्य में उनके पंचेंद्र पांचों ही इंद्रिया पाए जाती है, इसको द्रव्येंद्रिया है, बारहवें गुणस्थान वाले के तो बाह्य तो जन्म से ही पांचों इंद्रिया है ना, सभी जीवों को, अभी मनुष्य है सभी को पांच इंद्रिया है ही है, परंतु वहां क्षोपशम भाव बारहवें गुणस्थान तक है, ज्ञानावरण का क्षोपशम। तेरहवें में जाने पर क्या होता है, ज्ञान तो क्षयिक हो चुका, क्योंकि सभी आवरणों का क्षय हो चुका है, फिर भी बाह्य में जो शरीर के चिन्ह है, द्रवेंद्रिया है, वो तो वैसी की वैसी रहेगी, उसके द्वारा जानना नहीं चल रहा है, परंतु जो इंद्रिया बन चुकी है अभी, वो तो कुछ नष्ट नहीं होने वाली है, इसलिए भी उनको पंचेंद्रिय कहते हैं। तो बाह्य इंद्रियों का अस्तित्व पाए जाने से सहयोगी और अयोगी जिनों के पंचेंद्रियपना सिद्ध कर लेना चाहिए। उनको पंचेंद्रिय क्यों कहते हैं, एक तो उनके पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, एक बात, और बाह्य में उनके पांचों ही इंद्रिया दिखाई देती है, इसलिए उनके भी पंचेंद्रिय कहने में आता है। अब कहते अनिंद्रियो नाम कदम भवती, जीव अनिंद्रिय किस कारण से होता है। यहाँ पहले के समान नयों और निक्षेपों का आश्रय लेकर चालना करना चाहिए। पहले हमने सात नयों के द्वारा, चार निक्षेपों के द्वारा और पांच जो भाव है उदय का दी, उसके द्वारा कैसे कथन करने में आता है अलग अलग नयों की अपेक्षा, उसकी बात देखी थी हमने विस्तार से, तो यहाँ भी वे सारे ही लगाकर देखना चाहिए। तो उसका उत्तर आता है, प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि अलग अलग नए से अलग अलग कथन आता है, तो हमें कौन से नए से कैसा समझना चाहिए और कौन से भाव से समझना चाहिए, पांच भावों में कौन सा भाव यहाँ लगेगा, तो उसको कहते हैं क्षायिक लब्धि से जीव अनिंद्रिय होता है। पहले पूछा था कि कौन से किस कारण से जीव इंद्रिय, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय होता है, तो वहां कहा था क्षायोपशमिक लब्धि से होता है। अब यहाँ पूछते हैं कि अनिंद्रिय किस कारण से होता है, तो कहते क्षायिक लब्धि से होता है। यानी क्षय ज्ञान होता है वहाँ, तो इंद्रियों का कोई यूज रहता ही नहीं, इंद्रियों के द्वारा जानना रहता ही नहीं। देखो ऊपर उत्तर दिया था, खैयाए लब्धि यानी क्षायिक लब्धि से जीव अनिंद्रिय होता है। शंका, यहाँ शंकाकार कहता है इंद्रियमय शरीर के विनष्ट हो जाने पर इंद्रियों का भी नियम से विनाश होता है, अन्यथा शरीर और इंद्रियों के पृथकपने का प्रसंग आता है। क्या कहते हैं, जब जीव सिद्ध होते हैं, अयोगी तक तो शरीर है इंद्रिया भी है, और शरीर कपूरवत उड़ जाता है, शरीर ही नहीं रहा तो इंद्रिया भी अपने आप नष्ट हो जाती है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो शरीर भिन्न है और इंद्रिया भिन्न है, ऐसा मानना पड़ेगा। ये तो यहाँ तो एक एक स्टेटमेंट करते हैं, फिर शंका पूछेंगे। इस प्रकार इंद्रियों के विनष्ट हो जाने पर ज्ञान का विनाश हो जाता है। देखो ऐसे मानने वाले भी महाभाग है इस दुनिया में। मोक्ष किसे कहते हैं, एक ज्ञान से रहित हो जाना, शून्य हो जाना, उसको मोक्ष कहते हैं। शंकाकार के मुंह से आचार्य ऐसी बातें क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता वाले जीव है। ये शंकाएं भी आचार्यों ने खुद उठाई है, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडल में जी स्वयं प्रश्न उठाते हैं, उसका समाधान करते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न सामने वाले जीवों के पाए जाते हैं। या कौन से प्रश्न यहाँ उठ सकते हैं, ऐसा अंदाजा अनुमान लगाकर वो स्वयं ही प्रश्न उठाकर उसका समाधान करते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रियों के विनष्ट हो जाने पर ज्ञान का भी विनाश हो जाता है, क्योंकि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति मानने में विरोध आता है। ये बाह्य इंद्रियों को ही कारण माना है और इंद्रियों से ही ज्ञान होता है, इंद्रिया ही नहीं रही तो ज्ञान कैसे होगा, ऐसा मानते हैं ना। हमारे भी मन में प्रश्न उठते हैं, कैसे विग्रह गति में कैसे ज्ञान होता होगा, वहां तो कोई शरीर नहीं इंद्रिया नहीं है ना, यानी ये कहीं ना कहीं अभिप्राय
ये खोटी मान्यता वाले कोई दूसरे अन्य नहीं हम ही स्वयं है ऐसा समझना, क्योंकि हमारी खोटी मान्यता हमारे ख्याल में नहीं आती है। अभी जो आपको जो बताया गया है विग्रह गति में कैसा जानता होगा, कैसा कषाय करता होगा, ऐसा अपने को लगता है ना। वहाँ कषाय करने के लिए क्या है, अरे भाई चारित्र गुण है ना, तो इसीलिए तो उसका विवाह परिणमन चल रहा है और एक समय भी परिणमन रुकने वाला नहीं है।
ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं ना, निगोद जीव कैसा शुभ भाव करता होगा, मनुष्य गति में भी आ सकता है वहां से मर कर, है ना। हमने तो शुभ भाव को क्रिया रूप ही माने, क्रिया को ही भाव माना है, क्योंकि हम मंदिर में जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कुछ न कुछ क्रिया दिखाई देती है तो उससे हम वो भाव को जोड़ते हैं, तो वो कैसी क्रिया करते होंगे, ऐसा लगता है ना। देखो यहाँ क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके लिए दलील भी देता है, कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता, तो इंद्रिय रूप कारण नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा, ऐसे शंका करके अभी शंका चल रही है। और ज्ञान के अभाव में जीव का विनाश हो जाएगा। देखो देखो एक मान्यता गलत है तो कितनी, पहले में पहले माना था इंद्रियों के कारण ज्ञान होता है, जब जीव सिद्ध होता है शरीर भी नष्ट हो चुका तो इंद्रिया भी नष्ट हो चुकी, इंद्रिया चली गई तो कारण नहीं रहा तो ज्ञान भी नहीं होगा, तो ज्ञान नहीं रहेगा तो जीव का भी अभाव ही हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान का अभाव होने से निश्चेतन यानी जिसमें से चेतन निकल गया, चैतन्य जिसमें नहीं है, ऐसा निश्चेतनपने को प्राप्त हुए पदार्थ के जीवत्व मानने में विरोध आता है। ये जीव को जीव क्यों कह रहे थे, उसमें ज्ञान है चैतन्य है, इसलिए अब ज्ञान भी निकल गया तो जीव का भी अभाव हो जाएगा, और जीव का अभाव हो जाने पर क्षायिक लब्धि भी नहीं हो सकती। वो हम कहते ना हमेशा, कुमार ने एक मटका उल्टा रखा और उसको पूरी रास करनी है तो सभी मटके ऐसे उल्टे उल्टे औंधे ही रखेंगे तो उसकी रास होगी, तो अभी एक मान्यता उसने कौन सी गलत मान ली, इंद्रियों से ज्ञान होता है, इंद्रिय नहीं रहेगी तो ज्ञान भी नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा तो जीव भी नहीं रहेगा, जीव ही नहीं रहेगा तो क्षायिक लब्धि किसे होगी, तो क्षायिक लब्धि भी नहीं हो सकती, क्योंकि परिणामी के बिना परिणामों का अस्तित्व मानने में विरोध आता है। परिणामी यानी जो परिणाम परिणमन करता है, परिणाम जिसके होते हैं वो परिणाम यानी द्रव्य। तो द्रव्य ही नहीं रहा ना, जीव ही नहीं रहा, तो क्षायिक लब्धि जो उसका परिणाम है उसका अस्तित्व कैसे होगा, इसलिए क्षायिक लब्धि भी नहीं हो सकते। इस प्रकार इंद्रिय रहित जीव के क्षायिक लब्धि की प्राप्ति सिद्ध नहीं होती। प्रश्न इतना ही पूछा था कि जीव अनिंद्रिय कैसे होता है, तो उसके उत्तर में कहा था कि क्षायिक लब्धि से होता है। तो यहाँ कहते जो अनिंद्रिय है उसको क्षायिक लब्धि कैसे होती है, कि जो अनिंद्रिय है उसके ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान नहीं वो जीव नहीं, जो जीव नहीं उसको क्षायिक लब्धि नहीं है। प्रश्नकार का प्रश्न ख्याल में है ना, अभी उसका समाधान करते। यह शंका उपयुक्त नहीं है क्योंकि जीव ज्ञान स्वभावी है, नहीं तो जीव के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। यदि ज्ञान स्वभावी न होता तो उसका अभाव का प्रसंग आता। इंद्रियों भी जहाँ जिसके इंद्रियां पाई जाती है उसमें जो ज्ञान है वो जीव का स्वभाव है, वो जीव का अपना गुण है। तो ज्ञान ज्ञान स्वभाव में से प्रकट होता है, इंद्रियों में से नहीं आता है ना। यही तो अनादि की मान्यता रही हर जीव की मिथ्यात्व अवस्था में। अब कहते यदि कहा जाए कि ज्ञान स्वभावी जीव का अभाव हो जाने दो तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रमाण के अभाव में प्रमेय का भी अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। ये देखो न्याय की भाषा क्या है, प्रमाण यानी ज्ञान, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाण यानी ज्ञान और प्रमेय यानी गेय। यदि ज्ञान ही नहीं रहा तो गेयों का भी अभाव होने का प्रसंग आ जाएगा। ज्ञान क्या करता है, जानता है ना, तो जो जानने में आते विषय उसको प्रमेय कहते हैं। तो ज्ञान नहीं रहेंगे तो प्रमेय भी नहीं रहेंगे, वहाँ उसको प्रमेय कौन कहेगा। प्रमेय तो उसे कहने कहेंगे जो जानने में आते हैं, ज्ञान नहीं है तो प्रमेय भी नहीं है। और प्रमेय का अभाव है ही नहीं क्योंकि वैसा नहीं पाया जाता, क्योंकि वो प्रमेय जो जानने में आ रहे हैं ऐसे तो द्रव्य ये सारे पाए जाते हैं, उसका अभाव तो कभी होता नहीं है। इससे यही ग्रहण करना चाहिए यानी ऐसा ही जानना चाहिए कि ज्ञान का जीव उपादान कारण है। हमने क्या माना था, इंद्रियों के कारण ज्ञान होता है, ये उपादान कारण वहां बाह्य में माना था उसने। तो उपादान कारण जीव स्वयं है और जीव के अपने कारण से ज्ञान होता है, और वह ज्ञान उपादेय है। यहाँ उपादान और उपादेय में क्या समझना, हाँ उपादान उपादेय में निमित्त निमित्त कैसे घटाएंगे आप, हाँ हाँ बोलो, हाँ देखो देखो उपादान और उपादेय एक ही द्रव्य में घटित होता है। उपादान कारण को कहा और कार्य ने जो पर्याय हुई उसको उपादेय कहा। देखो सात तत्व में भी ये हेय गेय उपादेय कहते ना, उपादेय ने ग्रहण करने योग्य या जानने योग्य आश्रय करने योग्य, वो वाला उपादेय नहीं है। उपादान की अपेक्षा कार्य को उपादेय कहते हैं और निमित्त की अपेक्षा उसी कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। एक ही कार्य के दो नाम। अब यहाँ ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान हो रहा है उसमें जीव उपादान है, तो ये हमारा उपादेय हुआ, ज्ञान होना ये हमारा उपादेय है। अब निमित्त की ओर से अगर कहेंगे कि किसका, ये पेन का ज्ञान हो रहा है, या अगर शास्त्र का ज्ञान हो रहा है, या कर्मों का ऐसे ऐसी अवस्था पाई जाती है, इंद्रिया है निमित्त में तो बहुत सारे घटित हो गए, तो वो निमित्त की अपेक्षा ज्ञान को नैमित्तिक कहेंगे। यदि निमित्त का कथन करना है तो ये जो ज्ञान होने रूप पर्याय है उसको नैमित्तिक कहते हैं। जैसे हम घड़े पर घटाते हैं, मिट्टी का घड़ा बनता है तो मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी उसका उपादान कारण है, क्योंकि मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमित हुई है। जो स्वयं उस पर्याय रूप परिणमित होता है वह उसका उपादान यानी सच्चा कारण है। तो मिट्टी उपादान कारण और घड़ा उसको क्या कहेंगे, उसका उपादेय, बराबर। अभी कुम्हार को हम निमित्त कहते हैं, तो कुम्हार की अपेक्षा कथन करना है तो कुम्हार निमित्त, और उसका नैमित्तिक कौन? घड़ा बना, वो नैमित्तिक। यानी घड़ा बनने के दो कार्य नहीं हुए, एक ही कार्य हुआ है। उसी एक कार्य को मिट्टी का तो वो उपादेय कहा और कुम्हार का नैमित्तिक कहा। यानी उपादेय कहो या नैमित्तिक कहो, एक ही पर्याय है। एक कार्य के दो कारण पाए जाते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उपादान कारण की अपेक्षा उसी कार्य को उपादेय कहेंगे और निमित्त की अपेक्षा उसी कार्य को नैमित्तिक कहेंगे, बराबर। जो उपादेय है वही नैमित्तिक है, परंतु दो भिन्न कारणों की अपेक्षा हो। कथन हम अलग अलग कारणों की अपेक्षा से करेंगे उस कार्य को, कार्य तो एक ही हुआ है। तो यहाँ क्या कहते हैं देखिए, तो ज्ञान होने का उपादान कौन है? तो जीव स्वयं उपादान है। ज्ञान की पर्याय जानने रूप जो कार्य हो रहा है, कार्य है ना, जानना ये कार्य है, उसका उपादान जीव स्वयं है। और वह ज्ञान क्या है? उपादेय है, जो कि यावत द्रव्यात्मक ही है, अन्यथा द्रव्य के नियम का अभाव होता है। इसलिए इंद्रियों का विनाश हो जाने पर ज्ञान का विनाश नहीं होता। क्या कहते हैं? ज्ञान ये उपादेय है और वो द्रव्य का ही स्वभाव है ना, उपादान है, द्रव्य में है, तो द्रव्य हमेशा रहेगा तो उसका कार्य भी हमेशा ही रहेगा। परंतु द्रव्य के नियम का अभाव होता है, इसलिए इंद्रियों का विनाश, ज्ञान का विनाश नहीं होता। यानी यदि हम देखो, त्रिकाली उपादान लेना है तो द्रव्य है, हाँ, और पर्याय उसका उपादेय है। हम क्षणिक उपादान में घटाते हैं तो उस समय वो पर्याय होने की जो योग्यता है वो क्षणिक उपादान में लेंगे और पर्याय उपादेय घटित करेंगे। क्षणिक में दो बातें आती है, पूर्व पर्याय का व्यय उसमें आता है। हाँ।
अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें जीव उपादान हो गया और ज्ञान जो हुआ, ज्ञान होने का जो कार्य हुआ,
ज्ञान की पर्याय,
ज्ञान होने का जो कार्य हुआ वह उसका उपादेय है। अब यहाँ पर और एक जो आगे जो बात बता रहे हैं कि यावत द्रव्यात्मक ही है, कौन? ये उपादान और उपादेय दोनों ही द्रव्यात्मक है। यानी क्या? द्रव्य कभी भी पर्याय से रहित रहता ही नहीं है। कभी द्रव्य है और उसकी पर्याय नहीं है, या पर्याय और द्रव्य कहाँ से कहाँ गया मालूम नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि यावत यानी ये जो कि यावत यानी दोनों ही द्रव्यात्मक है, अन्यथा द्रव्य के नियम का अभाव होगा। अभी हम द्रव्य किसको कहेंगे? जो सत स्वरूप है, उत्पाद वे ध्रुवत्वा तो है या गुण पर्यायवत है, वो उसका जो नियम है वही उसी का अभाव हो जाएगा। इस तरह से यहाँ समझा रहे हैं।
यानी जीव और ज्ञान एक ही द्रव्य में है ना, दोनों एक द्रव्य और उसकी पर्याय, तो एक संपूर्ण द्रव्य ही, द्रव्यात्मक ही है। यदि द्रव्यात्मक नहीं मानेंगे तो द्रव्य का अभाव मानने का प्रसंग आएगा।
अभी यहाँ पर और भी एक नियम लग सकता है। देखो, गुण ज्ञान गुण और यहाँ जीव द्रव्य, ये दोनों का नित्य तादाद में संबंध है, वो कभी जुदे जुदे नहीं होंगे। लेकिन ये इंद्रिया है वो जुदी हो गई है, फिर भी द्रव्य का अभाव नहीं हुआ है, जीव का अभाव नहीं हुआ है। आगे वाले, इसलिए इंद्रियों का विनाश हो जाने पर भी ज्ञान का विनाश नहीं होता है, ये बात भी उन्होंने समझाई है।
देखो, यानी इंद्रियों के विनाश हो जाने पर वो निमित्त में लिया था इंद्रियों को, तो उस पर फिर शंकाकार पूछ रहा है, क्योंकि उसने भी सुना है कि एक कार्य होने में दो कारण होते ही है, उपादान कारण और निमित्त कारण। तो कहते भले आपका उपादान कारण रहे, पर निमित्त का तो व्यय हो गया ना, अभी निमित्त कारण का विनाश हो गया है, तो अभी कैसे होगा ज्ञान? देखो शंकाकार क्या पूछता है, ज्ञान के सहकारी कारणभूत, सहकारी कारण यानी निमित्त कारण, इंद्रियों के अभाव में ज्ञान का अस्तित्व किस प्रकार हो सकता है? निमित्त के अभाव में ज्ञान कैसे होगा, यानी निमित्त के अभाव में कार्य कैसे होगा? क्योंकि उसका ही उसने नियामक कारण माना है, और ऐसा भी माना है कि किसी कार्य में एक ही एक निमित्त होता है। देखो, निमित्त तो अनेक होते हैं और वे वेरिएबल भी होते हैं, नहीं, इंद्रियों का अभाव ही निमित्त नहीं लिया जा सकता।
देखो देखो, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, अभी यहाँ तो सिद्ध हो गए ना जीव, इंद्रिया रहित हो गया है, तो वो तो जान तो रहे हैं, तो उसमें निमित्त कौन है? ये आप ही प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हाँ बोलो बोलो। हाँ अरविंद भाई, आप बताएंगे कौन कौन? हाँ वही तो बोलो, पूरा विश्व उनके लिए निमित्त है, ख्याल में है? क्योंकि प्रमेय तो गुण है ना सब में। देखो यहाँ तो धवला में तो सिर्फ ऊपर ऊपर की मतलब ठोस बात बताई है, तो उसके अंदर की बात हमको पहचाननी है।
वो तो वहाँ तो सारे जानकार जीव थे ना।
नहीं नहीं, प्रश्नकर्ता ऐसा ही प्रश्न पूछेगा कि जो ऑर्डिनरी आदमी को कंफ्यूज कर डाले, अरे ये निमित्त नहीं तो फिर ये कैसा जानेगा, क्योंकि कार्य होने में तो दोनों ही बातें चाहिए, उपादान भी चाहिए और निमित्त भी चाहिए। तो फिर अभी निमित्त तो नहीं गया, इंद्रिया निकल गए, अरे निकलने देना, लोकालोक कहाँ गया है, वो तो अनादि आनंद रहने वाला है। हाँ बिल्कुल, और गेय से ज्ञान नहीं होता, ये भी ध्यान रखना हो। हाँ
किसमें? नहीं 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 मिटता, ज्ञान ज्ञान है, गेय गेय है। पूरे लोकालोक, पूरे पूरे लोकालोक को जानता है, सारे ही सर्व द्रव्य गुण पर्याय। हाँ हाँ, गेय है ना ये सब।
ऐसे भेद नहीं है,
भेद नहीं है, ज्ञान नहीं हो, गेय नहीं है, नहीं उसके भेद नहीं है। ये उसकी भाषा, वो समय सार की भाषा थोड़ी अलग होती है। वहाँ जाकर सातवीं गाथा में मैं ज्ञान नहीं, मैं दर्शन नहीं, मैं चारित्र नहीं, अभी तीनों गए तो मैं शून्य खाली हो गया, वे भेद नहीं है, समझे ना?
यानी जो त्रिकाली स्वभाव है उस स्वभाव में ऐसे भेद नहीं है, और हम ये ज्ञान गेय के जो भेद बता रहे हैं वो भी व्यवहार नहीं से बता रहे हैं। और आज जो सिद्ध है, सिद्ध क्यों, तुम हम है, हरेक का ज्ञान स्वभाव तो स्व पर प्रकाशक है ही। वहां आप ये कह सकते कि निश्चय से स्व को, स्व गेय को जान रहे हैं और व्यवहार से पर गेय को जान रहे हैं, लेकिन वो व्यवहार से पर गेय को जानना झूठा नहीं है, ये भी बात समझना, नहीं तो और एक उलझन में फंस जाओगे।
यहाँ तो लिखा था ना हमने गोमर सार में देखा, दोनों ही नए से दोनों को जानता है। स्व पर प्रकाशक शक्ति निश्चय से है उसमें, वैसा क्योंकि हम पर का नाम लेके समझाते ना, इसलिए उसकी, वो तो अभी अलग विषय है। यहाँ क्या कहते हैं, शंकाकार की शंका है, निमित्त तो अभी मिट गया, तो अश्विन भाई कह रहे अभाव रूप निमित्त कहो, वैसा नहीं चलेगा, ये एक एप्लीकेशन सब जगह नहीं चलेगी। क्योंकि आपको ऐसा समझाया था पहले, अभाव रूप निमित्त भी पाया जाता है, तो अभाव रूप निमित्त में जैसे माँ घर में नहीं है तो बच्चे उधम मचाते हैं, तो माँ का अभाव है ना इसलिए वो उधम मचा रहे, ऐसा उनको उदाहरण कहा था। परंतु यहाँ अभाव रूप अगर निमित्त लेना है तो ज्ञानावरण का अभाव कहो तो चले, हाँ उसका अभाव कहो, इंद्रियों का अभाव मत कहो, ख्याल है ना? हाँ। अभाव रूप निमित्त ढूंढना है, कर्मों में ढूंढना है, तो ज्ञानावरण का पूर्ण अभाव है, क्षय हो चुका है। परंतु यहाँ क्या कहते, अभी इंद्रियों को ही उसने ज्ञान का कारण निमित्त माना था, इंद्रिय ने खाली द्रव्य इंद्रियों की बात नहीं उठा रहे, वो क्षावश्रमिक जो इसको कहते क्षावश्रमिक भाव, उसको यहाँ इंद्रिया कहा है, तो उसका अभाव होने पर ज्ञान का अस्तित्व कैसे हो सकता है? अभी उसका समाधान करते नहीं, क्योंकि ज्ञान स्वभाव पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न नहीं होता। एक बात, क्योंकि ज्ञान स्वभाव जीव का है ना, तो किससे उत्पन्न होगा? अरे वो तो अनादि का है, जो अनादि का होता है वो उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं होता। एक बात, अब पर्याय में जो उत्पन्न होना है वो जीव का अपना स्वभाव है, है ना? तथा उत्पाद व्यय एवं ध्रुवत्व से उपलक्षित जीव द्रव्य का विनाश नहीं होता। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कैसा है कि उसके उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व पाए जाते हैं, क्योंकि ये उसका लक्षण है, ये तो प्रत्येक द्रव्य का लक्षण है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। तो ये बात जीव पर घटित होगी कि नहीं होगी? होगी, नक्की होगी। तो उत्पाद व्यय एवं ध्रुव जिसका लक्षण है, ऐसे जीव द्रव्य का कभी विनाश नहीं होगा। अतः इंद्रियों के अभाव में भी ज्ञान का अस्तित्व तो बना रहता है। हो गया, वो तो चाहिए, यानी ज्ञान का अस्तित्व तो इंद्रियों के अभाव में भी बना रहता है। अब एक फॉर्मूला और देते हैं, रूल। एक कार्य सर्वत्र एक ही कारण से उत्पन्न नहीं होता। एक कार्य में जो निमित्त अनेक अलग अलग दिखाई देते हैं, सर्वत्र उसी निमित्त का होने की जरूरत नहीं है। अन्य अन्य जगह में अन्य अन्य निमित्त कारण भी देखे जाते हैं, क्योंकि खदिर, शीशम, धौ, धम्मन, गोबर, सूर्य किरण और सूर्यकांत मणि, इन अनेक कारणों से एक अग्नि रूप कार्य उत्पन्न होता पाया जाता है। अग्नि उत्पन्न होती है, अभी आजकल की भाषा में गैस से भी होगी, लाइटर से भी होगी, पेट्रोल से भी होगी, घासलेट से भी होगी, या कुछ हम घास जलाए मैच बॉक्स से होगी, है ना। ये उन्होंने उस काल के, उस जमाने के उदाहरण दिए। शीशम, धव और धम्मन, अभी इसका अर्थ एक्चुअल मुझे भी मालूम। शीशम तो लकड़ी का नाम है, गोबर तो छाना को कहते हैं, और सूर्य किरण तो मालूम ही है, सूर्यकांत मणि, जो सूर्य किरण से उसमें अग्नि हो जाती है, जलता है वो। तो
सबसे पहला कौन सा है?
खदिर। खदिर ऊपर स्पष्ट लिखा है, देखो, खैर सिसव धव धम्मण गोमय सूरयर सुज्जकंते हिंतो समुपज्ज माणे कगीक जुवलभा। जुवलंभा चाहिए, यानी उपलंभा, यानी अग्नि रूप कार्य उत्पन्न होता है तो भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। सूर्य किरणों से भी आग लगती है ना, हम बीच में वो कांच पकड़ते हैं और उसकी किरणें कॉन्सेंट्रेट करते तो आग भी, कागज भी जलता है, रुई भी जलती है। तो भिन्न भिन्न कारणों से अग्नि उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। इसलिए अभी आगे ये तो हुआ दृष्टांत। तथा उस प्रकार छद्मस्थावस्था में, ये शब्द बराबर प्रिंट नहीं हुआ है, जब तक छद्मस्थ अवस्था है तब तक ज्ञान के कारण रूप से स्वीकार की गई इंद्रियां, इंद्रियों को निमित्त में कब तक रखा था? जब तक छद्मस्थ अवस्था है तब तक। उनके क्षीणावरण जीव के, जिन जीव का ज्ञान का आवरण क्षय हो चुका है उसको क्षीण आवरण जीव कहा, यानी केवल ज्ञानी जीव, क्षायिक ज्ञान वाले जीव, क्षीणावरण वाले जीव के भिन्न जातीय ज्ञान की उत्पत्ति में, अभी उनका जो ज्ञान है वो भिन्न जाति का है। क्षोभसम ज्ञान भिन्न जाति का था, वहां इंद्रियों का निमित्त बनता था। क्षायिक ज्ञान भिन्न जाति का है, अब वही कारण जो है वो ज्ञान की उत्पत्ति में सहकारी कारण हो ऐसा नियम नहीं है। इंद्रिया तो मात्र क्षोभसम ज्ञान में ही निमित्त होती थी, केवल ज्ञान भिन्न जाति का ज्ञान है, उसमें वही निमित्त अभी कुछ काम नहीं करेगा। ख्याल है ना, आपका प्रश्न था ना, अभाव रूप निमित्त नहीं, वो नहीं मानेंगे, वो वहां निमित्त भी भिन्न जाति के होंगे, क्योंकि यदि वैसा ही उन्हीं इंद्रियों को वहां भी अगर हम सहकारी कारण या निमित्त मानेंगे तो ऐसा मानने पर अति प्रसंग दोष प्राप्त होता है। अन्यथा मोक्ष के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है, या तो वहां भी उसको मानना तो अतिव्याप्ति जो कुछ दोष होता है, अति प्रसंग कहा उसमें, या तो ऐसा माने का मोक्ष ही नहीं होता किसी के, दोनों ही वहां प्रसंग हो जाएंगे। और मोक्ष का अभाव है ही नहीं है।
देखो यहाँ अति प्रसंग जो दिखाया है वो अतिव्याप्ति दोष आता है ऐसा कहेंगे, यानी अभी इंद्रिया है लेकिन जान भी नहीं रहा है, ऐसा कभी होगा कि नहीं? नहीं, वो मरा हुआ जो कोई होगा हाँ, उसके इंद्रिया तो दिख रहे हैं शरीर को, लेकिन वो जानने वाला जीव निकल गया तो उसको जानेगा कि नहीं? जानेगा तो जलाने के टाइम में तो भाग जाएगा, उधर कोई रुकेगा नहीं, ख्याल में है ना? ये अति अति प्रसंग बताया उन्होंने, यानी यहाँ अति व्याप्ति दोष आता है ऐसा। कौन से
अति प्रसंग? अन्यथा मोक्ष के अभाव का ही प्रसंग आ जाएगा, मोक्ष ही नहीं रहेगा।
आप ये मानो या वो मानो ऐसा कह रहे हैं,
और मोक्ष का अभाव है ही नहीं, क्योंकि मोक्ष तो है, क्योंकि बंध कारणों के प्रतिपक्षी रत्नत्रय की प्राप्ति है। जैसे बंध कारण है तो वैसे बंध कारण मिट जाने पर मोक्ष भी है, और कारण सर्वत्र अपना कार्य नहीं करता है ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता। इस कारण अनिंद्रिय जीवों में करण क्रम और व्यवधान से अतीत ज्ञान होता है। क्या कहते हैं? अनिंद्रिय जीव यानी केवल ज्ञानी जीव या बिना इंद्रिय वाले सिद्ध जीव, उनके क्या क्या नहीं है? करण यानी इंद्रिया नहीं है, क्रम यानी उनके ज्ञान क्रमिक नहीं है। ज्ञान में भी क्रम नहीं के पहले इस ज्ञानी को जाने फिर उस ज्ञेय को जाने, या पहले दर्शन हो बाद में ज्ञान हो, ऐसा भी क्रम नहीं है। ना ही करण है, ना ही क्रम है, और ना ही व्यवधान है। व्यवधान यानी कुछ रुकावट नहीं है, बाधा नहीं है। सभी ज्ञेयों को एक साथ युगपत जान लेते ना एक ही समय में, और प्रत्यक्ष जानते हैं, तो उसमें कोई काल का व्यवधान नहीं है, कोई दूरी का अंतर का व्यवधान नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है। ये कि बहुत सूक्ष्म इसलिए नहीं जानते, ऐसा भी कोई व्यवधान नहीं है उसमें। व्यवधान से अतीत यानी इससे परे, करण से भी परे है, फिर क्रम से भी परे है, और व्यवधान से भी परे यानी इनसे रहित है। व्यवधान यानी बाधा, उसमें अड़चन या रुकावट, ऑब्स्टेकल। अतीत ज्ञान होता है। देखो क्या कहते हैं, अनिंद्रिय जीवों में ज्ञान कैसे होता है? करण क्रम और व्यवधान से अतीत होता है यानी रहित होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए यानी ऐसा जानना चाहिए। यह ज्ञान निष्कारण भी नहीं है, निष्कारण यानी कारण रहित। क्यों? क्योंकि आत्मा और पदार्थ के सन्निधान से वह उत्पन्न होता है। पदार्थ है ना सामने, तो वो कारण में आ गए। इस प्रकार समस्त कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने के कारण क्षायिक लब्धि के द्वारा ही जीव अनिंद्रिय होता है। यहाँ सिद्धों की बात मुख्यता से उठाई है, क्योंकि सयोगी अयोगी में उपचार से भी पंचेंद्रियपना हमने कहा था, और वहाँ उसका कारण भी बताया था। यहाँ कहते समस्त कर्मों के क्षय से, इसलिए सिद्धों की बात यहाँ उठाई है कि एक क्षायिक लब्धि के द्वारा जीव अनिंद्रिय होते हैं। अब यहाँ तो इंद्रिय मार्गणा की बात समाप्त होती है, अब काय मार्गणा की बात। तो पहले में पहले काय मार्गणा की अपेक्षा से सभी जीवों के कितने भेद करेंगे? पहले संसारी जीवों के करेंगे ना, हाँ, षट काय, छह भेद होंगे। कौन कौन से? हाँ, पांच स्थावर काय और एक त्रस काय, हाँ। और फिर सिद्धों को हम अकायिक कहेंगे। तो कहते हैं कायानुवादेन पुढ़वी कायो नाम कदम भवती। अभी एक एक की काय का नाम लेंगे, क्योंकि पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक और एक त्रस कायिक। एक इंद्रियों को पांच में विभाजित किया, और द्विंद्रिय से तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, पंच इंद्रिय सबको एक ग्रुप में लिया त्रस काय वाले में। अभी अपना क्राइटेरिया बदला तो ग्रुप्स भी अलग अलग हो जाएंगे। तो काय मार्गणानुसार जीव पृथ्वी कायिक किस कारण से होते हैं? पहले तो एकेंद्रिय क्यों होते तो उसमें तो हमने देखा था, पर एकेंद्रिय में कोई पृथ्वी कायिक होते तो कोई वायु कायिक होते, ऐसा क्यों होते हैं? तो उसका कारण बताते हैं। पहले प्रश्न को ही समझा रहे, क्या पृथ्वी काय से निकला हुआ जीव भूतपूर्व ने से पृथ्वी काय कहलाता है? अभी इसमें प्रश्न क्या क्या है? अभी कोई पृथ्वी काय से निकल गया है जीव, क्या उसको हम पृथ्वी काय कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? एक बात, या पृथ्वी कायिकों के अभिमुख हुआ जीव नैगम नय के अवलंबन से पृथ्वी काय कहा जाता है, कि जो अभी पृथ्वी काय में उत्पन्न होने वाला जीव है उसको नैगम नय से हम पृथ्वी कायिक कहेंगे? हा? जैसे श्रेणिक राजा नरक में गए, अभी भी उसको हम श्रेणिक राजा कहते हैं, या नरक के अभिमुख होने के पहले से उसको नारकी कहना, ऐसे भी हो सकता है ना? तो क्या उस नय से कहते हैं हम? दूसरी बात, या पृथ्वी कायिक नाम कर्म के उदय से पृथ्वी कायिक कहा जाता है? ऐसी मन में शंका करके पूछा गया है, यह जीव पृथ्वी कायिक किस कारण से होता है? शंकाकार को तो शंका आना स्वाभाविक है, कायिक यानी पृथ्वी रूप, पृथ्वी ही जिसकी काया यानी शरीर है वो पृथ्वी कायिक जीव है। आपको याद होगा तो पहले हमने देखा था, जो विग्रह गति में जीव अभी शरीर तो धारण नहीं किया है तो उसको पृथ्वी जीव कहते हैं, पृथ्वी जीव हो, जब शरीर धारण करता है तो पृथ्वी कायिक जीव कहाँ, जब उसमें से जीव चला गया तो जो रह गया उसको पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वी वो काय है ना, पृथ्वी काय कहते हैं, अकेला काय रह गया, इस तरह से हमने देखा था, और सबको मिलकर एक सामान्य पृथ्वी ऐसा कह दिया, ऐसे चार भेद हमने अलग अलग गिनाए थे। अब यहाँ कहते हैं पृथ्वी कायिक किसको कहना, उसका उत्तर देंगे अभी। पुढ़वी काय नामाय उदयन, पृथ्वी कायिक नाम कर्म के उदय से जीव पृथ्वी कायिक होता है। शंका, नाम कर्म की प्रकृतियों में पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति नाम की प्रकृतियां निर्दिष्ट नहीं की गई है, यानी बताई नहीं थी हमने, तो नाम कर्म की 93 प्रकृतियां याद की, उसमें गति जाति शरीर बंधन संघात सहनन अंगोपांग स्पर्श रस गंध वर्ण अनुपूरी व्यायगति वगैरह वगैरह सारी हमने देखी, त्रस बादर पर्याप्त वगैरह, उसमें कहीं भी पृथ्वी कायिक का नाम नहीं था। इसलिए पृथ्वी कायिक नाम प्रकृति के उदय से जीव पृथ्वी कायिक होता है यह बात घटित नहीं होती। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि नाम कर्म संबंधी एकेंद्रिय जाति प्रकृति में उक्त सब प्रकृतियों का अंतर्भाव हो जाता है। बताने के लिए तो हम पर करुणा की आचार्यों ने कि 93 ही भेद बताए और वो भी याद करने में हमको बहुत पसीना छूट जाता है। तो वहाँ एकेंद्रिय जाति नाम कर्म, द्विंद्रिय जाति नाम, वो भी हम अखा पिंड का एक साथ याद कर लेते हैं, जाति नाम कर्म 5 प्रकार के ऐसा करके, गति नाम कर्म 4 है, तो हम 93 के बदले 42 ही याद कर लेते हैं। जैसे गति जाति शरीर बंधन, तो शरीर में 5 शरीर, बंधन में 5 बंधन, संगात में 5 संगात, तो शॉर्ट में हम याद करते थे, परंतु वो एक एक के अनेक भेद है। एकेंद्रिय जाति नाम कर्म में भी ये 5 भेद हो गए, पृथ्वी कायिक वाले अग्नि कायिक वाले वगैरह वगैरह। देखो, नाम कर्म संबंधी एकेंद्रीय जाति प्रकृति में उक्त सब प्रकृतियों का अंतर्भाव हो जाता है, और कारण के बिना कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है। ये पृथ्वी कायिक नाम कर्म ये कारण है, और उसके कारण वहां जीव उत्पन्न होता है, ये उसका कार्य है। और पृथ्वी अप तेज वायु वनस्पति और त्रसकायिक आदि अनेक कार्य देखे जाते हैं, कोई जीव पृथ्वी कायिक में उत्पन्न होता है तो कोई जल कायिक आदि में, कोई त्रस कायिक में। ये जो कार्य हुआ है वो कारण के बिना नहीं होता, तो कारण कौन है? तो उस काय वाला कर्म जो जाति कर्म के अंदर आता है, जाति नाम कर्म के भीतर ही अंतर्भूत है, उसके उदय से जीव पृथ्वी कायिक आदि होता है। देखो क्या कहते हैं, अनेक कार्य देखे जाते हैं, कौन कौन से? पृथ्वी, अब जल वगैरह वगैरह जो सारे जो है वो, और त्रस काय वगैरह। इसलिए जितने कार्य है उतने ही उनके कारण रूप कर्म भी है। अब पृथ्वी में भी कोई मिट्टी होगा, कोई पत्थर होगा, कोई हीरा माणिक होगा, तो उसमें उतने उतने अलग अलग कर्म होंगे कि नहीं उनके, बराबर? तो जितने कार्य है उतने ही उनके कारण रूप कर्म भी है। हम ज्ञान में भी, ज्ञानावरण में भी ऐसे लगाते हैं, जितने ज्ञान है उतने उसके आवरण है। जैसे जर्मन भाषा संबंधी ज्ञान है तो जर्मन भाषा वरण ज्ञान वो आवरण वाला कर्म भी है। हमें वो ज्ञान नहीं है तो वहाँ कर्म का आवरण है, और जिसके ज्ञान है उसका क्षोभशम है। तो जितने कार्य है उतने ही कारण रूप कर्म भी है, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। तो ये जीवों में इतनी वैरायटी हमें जो दिखाई दे रही है, वनस्पति अकेली लेंगे तो उसमें भी कितनी अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हैं, तो ऐसा क्यों? क्यों? तो वैसा वैसा नाम कर्म का उदय है। इसलिए ये हरा ही क्यों, पीला क्यों नहीं? अभी फूल के रंगों में भी हमने कितनी विविधता देखते ना, ये बोगनवेल खाली वो तो कोई लाल है तो कोई सफेद है तो कोई, उसमें कितने वैरायटी शेड्स होते हैं, तो उनके वैसे वैसा वर्ण नाम कर्म का उदय पाया जाता है। ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। अब शंकाकार पूछता है, यदि जितने कार्य हो उतने ही कारण रूप कर्म होते हैं तो भ्रमर, मधुकर, शलभ, पतंग, इंद्रगोप, शंख, मत्कुण, नीम, आम्र, जंबू, जंबोर और कदंब। देखो कोई तो भ्रमर, मधुकर वगैरह तो कीड़े मकोड़े आदि सब ले लिया, और फिर वनस्पतियाँ भी कुछ ले ली उन्होंने, ये इंद्रगोप शंख वगैरह द्विइंद्रिय ले लिए, मत्कुण, मत्कुण यानी समझते ना, मत्कुण नहीं समझते? माकड़, क्या समझ, गुजराती में क्या कहते हैं आप? हाँ माकड़ कहते हैं ना, हाँ बेड़बग, हाँ खटमल, मत्कुण। पहले मैंने मत्कुण का एक श्लोक बताया था ना आपको, नहीं नहीं याद है? संस्कृत में हम स्कूल में थे, स्कूल कॉलेज में, तभी हमको ऐसे संस्कृत में जो कुछ काव्य शास्त्र विनोद वाले भी श्लोक होते थे, हाँ तो वहाँ था कमला कमले शेते हरि शेते हिमालय, क्षीरा धौच हरि शेते मन्ने मत्कुण शंकया। क्यों? कमले कमला शेते, कमला यानी लक्ष्मी, कमल में रहती है, हरस शेते हिमालय, शंकर हिमालय में रहता है, और क्षीराब्ध क्षीर सागर में वो नाग में, नाग की शैया पर वो विष्णु रहता है। क्यों? तो मन्ने मत्कुण शंकया, मुझे ऐसा लगता है कि खटमल के डर से वो वहां रहते। हाँ ये अलग अलग ले लिया, कोई एक ऑर्डर नहीं लिया है, अलग अलग द्विंदीय तिंदीय आदि सभी जीव लिए यहाँ, और वनस्पति भी लिए, आम जंबू वगैरह जो लिखे है ना, आम्र वगैरह, जंबोर, कदम्ब, कदम्ब तो कोई फूल का वृक्ष है। तो ये जो सारे आदिक नामों वाले भी नाम कर्म होने चाहिए। आपको जो मालूम है पशु प्राणी पक्षी सबका नाम ले लीजिए, सिंह है, व्याघ है, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, जो कुछ है, हाँ कॉकरोच आपको याद है, कॉकरोच है, हैं? तो क्या इतने सारे नामों वाले भी नाम कर्म हो गए? क्योंकि एक कवि उसने सूत्र पकड़ा, जितने कार्य देखे जाते हैं उतने कारण वाले वहां नाम कर्म भी हो गए। तो समाधान करते, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि यह बात स्वीकार की है। यही तो बात आचार्य कहना चाहते कि जितने हमें विविध प्राणी पक्षी जो कुछ दिखाई देते हैं उनके उतनी ही विविधता वाले नाम कर्म भी है। शंका, अब शंकाकारी शंका पूछ रहे हैं। पृथ्वी कायिक जीवों के पहले हमने देखा था ना एक इंद्रियों में कौन कौन से नाम कर्म के उदय पाए जाते हैं, तो विग्रह गति में 21 वाला होता है, मिश्र शरीर वाला 24 वाला होता है, और फिर उसमें एक इंद्रिय हो गए तो 25 होगा, 26 27 वगैरह होंगे। तो यहाँ कहते हैं पृथ्वी कायिक जीवों के 21, 24, 25, 26 और 27 प्राकृतिक 5 उदय स्थान होते हैं। इन 5 उदय स्थानों की प्रकृतियों का उच्चारण करके ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार इन बहुत प्रकृतियों के एक साथ उदय आने पर पृथ्वी का एक नाम कर्म प्रकृति के उदय से जीव पृथ्वी का एक होता है, यह कैसे बन सकता है? जो पहले भी ऐसा ही प्रश्न उठाया था जब हम गति नाम कर्म की बात कर रहे थे, तब कि नरक गति नाम कर्म से जीव नारकी होता है, ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि नरक गति नाम कर्म वाले जीव के विग्रह गति में 21 का उदय है और वहां जाने पर 26 का उदय है, फिर 26 में से 25 का है, 26 का नहीं होता, 25 फिर 27 फिर 28 29 वगैरह, तो अकेले नाम कर्मों को क्यों लेते हैं? वैसा ही प्रश्न यहाँ पर है कि पृथ्वी कायिक जीवों के कौन कौन सा उदय होता है, तो विग्रह गति में 21 वाला है, बाद में 24 है, फिर 25 है, फिर 26 है, फिर 27 है, तो अकेले पृथ्वी कायिक नाम कर्म के उदय से वो जीव पृथ्वी कायिक होता है, ऐसा क्यों कहते हो? प्रश्न ख्याल में है, उसका उत्तर क्या सोचेंगे आप? पहले हम उत्तर सुन चुके, पहले जब पहले बात आई थी, नहीं याद नहीं है, याद करने का नहीं, ये तो बस कॉमन सेंस है उसमें। हाँ हाँ, अन्य जो प्रकृतियां हैं वो तो सबके लिए कॉमन है, जो पृथ्वी कायिक में है वे अग्नि कायिक के लिए भी है, जल कायिक के लिए भी है, वायु कायिक के लिए भी है, तो ऐसे ही प्रकृति चाहिए कि जिसके उदय से जीव पृथ्वी कायिक ही होगा। वो डिफरेंस किस में? तो पृथ्वी कायिक नाम कर्म या अग्नि कायिक नाम कर्म, इसमें बाकी तो साधारण है। उसके उदय से पृथ्वी कायिक कहेंगे हम तो वो अतिव्याप्ति दोष जो कुछ है वो आ जाएगा, है ना? तो उसका समाधान करते नहीं, क्योंकि दूसरी प्रकृतियों के उदय की अन्य जीवों में साधारण पाई जाती है, यानी उनका उदय तो सब में कॉमन है, साधारण यानी कॉमन, अन्य जीवों में भी पाया जाता है, तो उसके कारण अगर पृथ्वी कायिक होता है ऐसे कहेंगे तो सब में ही वो पाई जाती है, तो वे तो अन्य कायिक वाले जीव है। किंतु पृथ्वी कायिक नाम कर्म का उदय उस प्रकार साधारण नहीं है, ये तो स्पेसिफिक है, पृथ्वी कायिक जीवों में ही पाया जाता है, अन्य में नहीं पाया जाता। दोनों ओर से अविनाभाव बदला ना, अविनाभाव दोनों ओर से बताया जाता है, व्याप्ति जो है वो दोनों ओर से होती है कि पृथ्वी कायिकों में तो पाया जाता है, अन्य में नहीं पाया जाता, यानी सभी पृथ्वी कायिकों में पाया जाएगा और अन्य में नहीं पाया जाएगा, इसलिए उसके ही उदय में जीव पृथ्वी कायिक होते हैं, क्योंकि अन्य पर्याय में वह नहीं पाया जाता। ये तो पृथ्वी कायिक के ऊपर घटा है, वैसे ही अप कायिक में, वायु कायिक में, सब में ऐसा ही घटाएंगे। अब आगे का सूत्र देखते हैं। आउ कायो नाम कदम भवदि, जीव अप कायिक के किस कारण से होता है? दीपेश, अप यानी क्या मालूम है? हाँ, जल, ये अवधि शब्द है ना, अवधि, जलावधि, अवधि शब्द सुना है, सागर को अवधि कहते हैं, एक उदधि भी कहते हैं, अवधि भी कहते हैं, अभी तो आया था ना क्षीराब्धौच हरिष्यते, मैंने बताया ना, तो अवधि यानी समुद्र, अप का समूह यानी जल, तो जीव अपकाय किस कारण से होता है? उसका उत्तर देते हैं, आउकाय नामाय उदयेन। अपकायिक नाम प्रकृति के उदय से जीव अपकायिक होता है। जैसे पृथ्वी कायिक पर घटा है, वैसे वो सारे प्रश्नोत्तर यहाँ भी हो जाएंगे। तेउ कायो नाम कदम भवदी। देखो, तेजो कायिक कहो या अग्नि कायिक कहो, एक ही बात है। जैसे जल कायिक के लिए अप कायिक भी कहते हैं, वैसे हाँ अग्नि कायिक के लिए तेज कायिक भी कहते हैं। जीव अग्नि कायिक किस कारण से होता है? तो तेउ काय नामाय उदयन। अग्नि कायिक नाम प्रकृति के उदय से जीव अग्नि कायिक होता है। वायु कायो नाम कदम भवदी। जीव वायु कायिक किस कारण से होता है? वायु काय नामाय उदयन। वायु कायिक नाम प्रकृति के उदय से जीव वायु कायिक होता है। वनस्पति कायो नाम कदम भवदी। जीव वनस्पति कायिक किस कारण से होता है? तो कहते हैं वनस्पति काय नामाय उदयन। वनस्पति कायिक नाम प्रकृति के उदय से जीव वनस्पति कायिक होता है। हाँ, आपका प्रश्न है, जैसे वनस्पतियों में भेद दिखते हैं ना, अलग अलग वनस्पति, कोई आम्रकी है, कोई जांबू है, अभी जो बताए, कोई कमल है, कोई कुछ है, तो क्या ऐसे अग्नि और वायु में भी फर्क है? तो हाँ है, क्योंकि अग्नि में भी हमने देखते हैं चिंगारी है, जो ये बिजली है, ये सारे अग्नि कायिक जीव है। ये अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी अग्नि कायिक है, तो उसके भी अलग अलग। हाँ, समय ज्ञान चंद्रिका में वो बताए थे ना किस किस को, ये कर्णन योग में भी मैंने उसके ही आधार से लिखा है। उसमें जो जीव समास वाला प्रकरण होगा उसमें है, या कायिक वाला जो है ना आगे वाला, पृथ्वी कायिक आदि, काय मार्गणा में होगी ये बात, आप जरा उसमें देखना। ये पृथ्वी कायिक अलग अलग कौन से है, अग्नि कायिक अलग अलग जीव कौन से है, उसमें पूरे ही लिखे हैं। संख्या भी असंख्यात, अब खाली हम तोते देखते हैं या चिड़िया देखते हैं, तो उसमें भी कितने ही वैरायटीज होती है ना। हाँ, मनुष्यों में तो इतने योनियां है। देखो, इन सूत्रों का अर्थ सुगम है। विशेषता केवल इतनी है कि अपकायिक आदि जीवों के 21, 24, 25 और 26 प्रकृतिक चार उदय स्थान होते हैं, उनके 27 प्रकृतिक उदय स्थान नहीं होता। देखो, एक इंद्रियों के तो चार चार उदय स्थान होते हैं, क्योंकि भाषा पर्याप्ति नहीं है ना, इसलिए पांचवा उदय स्थान उनके नहीं होता। तो इसलिए यहाँ 27वां क्यों नहीं लिखा? आतप उद्योत वाला नहीं होगा, तो आतप वाला किस में होगा? अकेले पृथ्वी कायिक में होगा, बादर पृथ्वी कायिक में आतप वाला होगा, और उद्योत वाला वनस्पति में भी होगा और जल में भी होगा। हाँ, पृथ्वी में भी होता है। हाँ, पृथ्वी में तो आतप भी हो सकता है, उद्योत भी हो सकता है। तो पहले तो निषेध किया और बाद में फिर बताएंगे। देखो, उनके 27 प्रकृतिक उदय स्थान नहीं होता, क्योंकि उनके आतप और उद्योत, इन दो प्रकृतियों के उदय का अभाव होता है। किंतु अपकायिक और वनस्पति कायिक जीवों के, पहले अपकायिक आदि सबको ले लिया, यानी पृथ्वी को छोड़कर बाकी सब ले लिए, अब फिर उनको उनमें से अपकायिक और जल कायिक जो है, अपकायिक और वनस्पति कायिक जीवों के 27 प्रकृतिक उदय स्थान को मिलाकर 5 उदय स्थान होते हैं, यानी किसी को वो नहीं है और किसी को है, तो उनके 5 उदय स्थान हो गए। क्योंकि उनके आताप के बिना उद्योत का कहीं कहीं उदय देखा जाता है। अब ये पांचों ही काय संबंधी अगर समझना है तो बादर पृथ्वी कायिकों के किन्हीं किन्हीं के आतप नाम कर्म का उदय है तो उनमें वो एक्स्ट्रा एक 27 वाला स्थान होगा। वही तो बता रही हूँ, बादर पृथ्वी कायिकों में किसी किसी को, उसमें भी किसी किसी को डाला मैंने, सभी पृथ्वी कायिकों को नहीं है, पृथ्वी कायिकों में भी किसी किसी को आतप का उदय है। तो आतप वाले को हमने देखा ना, पहले कौन सा स्थान है, 21 वाला होगा, फिर 24 वाला होगा, 24 के बाद एकदम 26 वाला और 27 वाला होगा, क्योंकि प्रघात के साथ उनको आतप का भी उदय शुरू होगा शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर, बराबर। अब जो जिसको आतप उद्योत नहीं, उसके क्या होगा, पहले 21 का, फिर 24 का, फिर 25 का और 26 का। तो यहां कहते हैं अभी आतप के बिना, किसकी बात चले, जल कायिक और वनस्पति कायिक है, उनके तो आतप नाम कर्म का उदय नहीं है, तो किसका है, किसी किसी को उद्योत का हो सकता है। यानी उद्योत नाम कर्म एक इंद्रियों में पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक में हो सकता है, और द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तिर्यंचों में भी हो सकता है, परंतु आतप नाम कर्म का उदय एकमात्र बादर पृथ्वी कायिक में ही होगा। तो अग्नि में किसका उदय होगा, आतप का होगा कि उद्योत का होगा? हाँ हाँ, क्या कहते हैं अरविंद भाई, क्या कहते हैं? नहीं होगा, दोनों का ही नहीं है। अग्नि में जो उष्णता और ताप दिखाई देता है वो उनके स्पर्श नाम कर्म का उदय है। आतप उद्योत ये पुण्य प्रकृति है ओ? और ये पांचों ही जो कायिक जीव है उसमें अग्नि और वायु सबसे खोटे वाले हैं, क्योंकि हमने देखा था उसमें से मरकर कोई मनुष्य नहीं हो सकता, कोई एक इंद्रिय तो देवनारकी हो ही नहीं सकता है, परंतु अन्य निगोद में से भी जीव मरकर मनुष्य हो सकता है, सूक्ष्म निगोद में से मरकर मनुष्य हो सकता है, परंतु अग्नि कायिक और वायु कायिक मरकर कोई मनुष्य नहीं होगा। देव मनुष्य, देव मरकर पृथ्वी कायिक में जन्म ले सकते हैं, परंतु देव मरकर ये अग्नि वायु नहीं होगे, बाकी सब में हो सकते हैं जन्म ले। क्या ना? तो ये जो आतप और उद्योत है वो अग्नि और वायु में नहीं है, आतप तो अकेले पृथ्वी में है और उद्योत वो पृथ्वी, जल और वनस्पति, वे भी बादर हो, सूक्ष्म में उनका नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म भी कैसी प्रकृति है, अप्रशस्त है। हाँ? देव तो पृथ्वी कायिक में आते हैं, देखना पड़ेगा, फिर आप देखना, कल देख के बताओ, सम्यक ज्ञान चंद्रिका में देख के बाओ। हाँ हाँ है वहां पर, अभी 28 नंबर का सूत्र कहते हैं, ये तो पांच ही स्थावर काय संबंधी बात देखी हमने। अब त्रसकायो नाम कदम भवदी, जीव त्रसकाय किस कारण से होता है, यह सूत्र सुगम है, ये प्रश्न समझ में आवे ऐसा है, उसका उत्तर देते हैं, त्रसकाय नामाय उदयन, त्रसकायिक नाम प्रकृति के उदय से जीव त्रसकायिक होता है। यह सूत्र भी सुगम है, विशेषता यह है कि त्रसकायिक जीवों के अभी उदय स्थान बताए हो, 20 किसको होगा, 20 हाँ समुद्घात वाले केवली को, वे त्रस है कि नहीं है? क्योंकि ऐसे ना अरिहंतों को त्रस कहने में जरा जी बहुत डरता है। तो 20 अभी मनुष्यों में जितने हमने मैक्सिमम 11 स्थान देखे थे वो यहाँ पर बताएंगे, 21 भी तीर्थंकर वाले उसको समुद्घात अवस्था में होते, या साधारण अन्य जीवों को, त्रसे जीवों को विग्रह गति में भी होंगे, बराबर। 25 वाला स्थान देवों को भी होता है, नारकियों को भी होता है, आहारक वाले को भी होता है, बराबर। हाँ, अभी यहाँ एक इंद्रिय की बात नहीं है, त्रसों की बात चल रही। 26 वाला वो शरीर पर्याप्ति वाले काल में होगा या विग्रह गति में, ये विग्रह गति में नहीं, समुद्घात वाले को भी उतरते समय होगा। 27 वाला, 25 वाला दो बढ़कर 27 वाला हो जाता है। 28 वाला, 27 वाले में एक बढ़े या 26 वाले में दो बढ़े, उस प्रकार 28 वाला होता है। 29 भी वैसे ही होता है और एक बढ़ने पर। 30 और 31, 31 वाला हमने देखा था, तीर्थंकर वाला जो है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय के साथ 31 वाला स्थान देखा था। 9 और 8 ये अयोगी केवली के देखे थे हमने, तीर्थंकर सहित 9 होते हैं। तीर्थंकर जो नहीं है, सामान्य जो है केवली, अयोगी गुणस्थान में उनके 8 का उदय होता है। इस तरह इतने प्रकृतिक यानी प्रकृति वाले 11 उदय स्थान होते हैं। इनको जान कर कहना चाहिए, द्विंद्रिय से लेकर वो सारे जो कॉमन है ना, और मनुष्यों में इतने एक्स्ट्रा सारे 11 स्थान है, तो जे स्त्रस है उनमें जो जो पाए जाते हैं वो सब यहाँ बताएं। हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। तीनों एक इंद्रियों में जाते हैं। ये देव मरकर कहाँ कहाँ जाते हैं प्रश्न था ना अभी देवेंद्र भाई का, तो देव मरकर तीनों में ही बादर में जाते हैं। बादर पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक। अब ये तो षटकाय की तो बात हुई, फिर अकायिकों की बात करेंगे। ये अकायिक जीव कौन कौन है? हाँ, सिद्ध जीव। हाँ, अकायो नाम कदम भवदी, जीव अकायिक किस कारण से होता है, यहाँ प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। षटकायिक नाम प्रकृतियों का विनाश नहीं होता है, क्योंकि मिथ्यात्वादिक आश्रयों का विनाश नहीं पाया जाता। क्या कहते हैं, जैसे पृथ्वी काय नाम कर्म का उदय चल रहा है और ये त्रस नाम कर्म का उदय चल रहा है, कब तक? अयोगी गुणस्थान तक। तो किसी को ऐसा प्रश्न होता है कि ये जो षटकायिक संबंधी जो उदय है वो बीच में ही रुक जाए, ऐसा नहीं होता हुँ? क्योंकि मिथ्यात्वादिक आश्रयों का विनाश नहीं पाया जाता। ये तो शंकाकार को कौन सी शंका उठ सकती है, उसकी बात चल रही है। ये स्टेटमेंट नहीं है, प्रश्न है। और अनादिपने की अपेक्षा नित्य मिथ्यात्व विनष्ट नहीं होता। मिथ्या तो कब से चला आ रहा है, अनादि का है, तो उसको नित्य कहा, तो जो नित्य है उसका विनाश नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। इसलिए आश्रय तो है ही है, तो आश्रय है ने वो सारे उदय रूप कर्म चल रहे हैं, क्योंकि नित्य का विनाश के साथ विरोध है। एक शंकाकार की कंफ्यूजन कहाँ कहाँ चलती है उसकी बात है, फिर उसका उत्तर दे देंगे। मिथ्यात्वादिक आश्रय साधी नहीं है, ये प्रवाहपने के अपेक्षा जिसको अनादि कहा है उसको ये सर्वथा ही नित्य और अनादि मान रहा है, ख्याल है ना। एक 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 करके अनादि से प्रवाह है, परंतु हर समय का तो आदि वाला ही है ना। परंतु अभी मान्यता में क्या गड़बड़ हो रही है, वो तो अनादि का है, सादी नहीं है, क्योंकि संवर के द्वारा निर्मूलतः आश्रय के दूर हो जाने पर उसकी पुनः उत्पत्ति होने में विरोध आता है। यह सब मन में धारण करके कहा गया है कि जीव अकायिक किस कारण से होता है। एक प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि ये ऐसे सारे कंफ्यूजन मन में है, इसलिए प्रश्न पूछा। अब उसका समाधान करेंगे। कहते क्षायिक ऊपर खैयाए लब्धिये, यानी क्षायिक लब्धि से जीव अकायिक होता है। अनादि होने से आश्रव नित्य नहीं होता, क्योंकि आश्रव जबकि अनादि का है फिर भी नित्य नहीं है। है तो अनादि का फिर भी नित्य नहीं है। जैसे जीव द्रव्य कब का है, अनादि का है, और कैसा है, नित्य है, वैसे आश्रव अनादि का है फिर भी नित्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कूटस्थ अनादि को छोड़कर प्रवाह अनादि में नित्यत्व नहीं पाया जाता। क्या कहते हैं? ये सारे जो द्रव्य है वो कूटस्थ अनादि है, वो बिल्कुल नित्य है, अनादि होते हुए नित्य है, परंतु ये कौन से है? ये पर्याय है और प्रवाह की अपेक्षा अनादि है। यानी अनादि से हर समय वो मिथ्यात्व 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 नया नया हर समय होते आया है, इसलिए हम कहते हैं मिथ्यात्व अनादि का है। उसको कहते हैं प्रवाही, प्रवाह अनादि, एक कूटस्थ अनादि और एक प्रवाह अनादि। कूटस्थ अनादि यानी अनादि से जैसा है वैसा ही चल रहा है, जो सारे ही जो छह द्रव्य है वो नित्य है ना, परंतु ये मिथ्यात्व कैसा है? प्रवाह रूप है, पर्याय की बात है यहाँ। तो हर समय नई नई पर्याय है परंतु अनादि से ही है, इसलिए उसको कहा प्रवाह अनादि, उसमें नित्यत्व नहीं पाया जाता। यदि पाया जाए तो, यदि हम इसको पाया जाए अनादि का है ऐसा, या प्रवाह को भी अगर हम नित्य मानेंगे तो उसका कभी विनाश ही नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं ना बीज पहले के वृक्ष पहले, अनादि है, परंतु अनादि से वही बीज नहीं है, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, वृक्ष से भी, ये तो प्रवाह रूप से अनादि का है। तो यदि उसमें वही बीज ऐसा मानेंगे तो यदि पाया जाए तो बीजादि का विनाश नहीं होना चाहिए, अनादि का वही बीज होना चाहिए। पर हम देखते बीज उसमें से वृक्ष, वृक्ष में से बीज, परंतु कितने बीजों का तो नाश भी देखने में आता है, उसमें से फिर वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होगी। जला देंगे हम बीज को तो उसका नाश देखने में आता है, ये बात यहाँ कहते हैं कि बीजादि का विनाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रवाह रूप से तो उनमें अनादित्व देखा जाता है। बीज और वृक्ष ऐसे प्रवाह रूप से तो अनादि के है बीज, फिर भी उसमें नाश देखा जाता है, अनादि का होते हुए भी नित्य नहीं है वो। इसलिए अनादित्व आश्रव के नित्यत्व सिद्ध करने में साधन नहीं हो सकता। आश्रव भी अनादि से है, किस अपेक्षा? प्रवाह की अपेक्षा। तो प्रवाह की अपेक्षा जो अनादि का है उसका नाश हो सकता है, होता है, होता हुआ देखने में भी आता है। तो अनादित्व आश्रव के नित्यत्व सिद्ध करने में साधन नहीं हो सकता, यानी उसको हम प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा मानने में अनैकांतिक दोष आता है। और आश्रव कूटस्थ अनादि स्वभाव वाला है नहीं। हमने जैसे द्रव्य को देखा था, द्रव्य कैसा है? कूटस्थ अनादि, अनादि का है, परंतु आश्रव प्रवाह रूप से अनादि का है, कूटस्थ अनादि वाला नहीं है, क्योंकि प्रवाह की अपेक्षा अनादि रूप से आए हुए ये मिथ्यात्व असंयम आदि जो है वो कैसे है अनादि के, परंतु प्रवाह रूप से अनादि से आए हुए। ऐसे अनादि से प्रवाह रूप से आए हुए मिथ्यात्व असंयम और कषाय रूप आश्रवों का वर्तमान काल में भी किसी किसी जीव में विनाश देखा जाता है। किसी किसी जीव में ने जो सम्यक दृष्टि उसका मिथ्यात्व नष्ट हुआ है ऐसा हम कहेंगे ना, और जो संयमी है उसका मिथ्यात्व भी नष्ट हो चुका है, असंयम भी नष्ट हो चुका है, और जो अरिहंत भगवान है उनके कषाय भी नष्ट हो चुके हैं। तो ये भी किसी किसी जीव में नष्ट होते हुए देखने में आते हैं। इसलिए उसका जो कहना था कि ये मिथ्यात्वादी आश्रव अनादि से है और ये षटकायिक प्रकृतियों का नाश नहीं होता वगैरह वगैरह जो बात उसने पूछी थी, उसका उत्तर आ गया। अब फिर शंका, अभी एक शंका का समाधान करते तो दूसरी शंका कहीं ना कहीं चली आती उसकी। योग क्या औदयिक भाव है, क्या क्षावशमिक है, क्या पारिणामिक है, वो प का पा करना, क्या क्षायिक है, क्या औपशमिक है? योग जो है ये पांच भावों में से कौन सा भाव है ये पूछ रहे हैं। योग क्षायिक तो हो नहीं सकता, क्योंकि संसारी जीवों के स सर्व कर्मों के उदय सहित वर्तमान रहते हुए योग के अभाव का प्रसंग आता है, क्या कहते हैं? इसको शायक नहीं कह सकते, क्योंकि जीवों के, संसारी जीवों के कर्म का सद्भाव भी है और योग भी है। योग अधिक शायक होता तो कर्मों के क्षय होने के बाद योग उत्पन्न होता, परंतु मिथ्या तो अविरति प्रमाद कषाय योग सभी है ना, पहले गुणस्थान से तेरहवें तक योग है, तो उसको हम क्षायिक तो नहीं कह सकते, बराबर। तथा और यदि उसको क्षायिक मानते तो सर्व कर्मोदय से रहित सिद्धों को योग के अस्तित्व का प्रसंग आता है। यदि योग को क्षायिक मानते तो संसारी जीव में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनके सभी कर्मों का सद्भाव है, फिर भी योग पाया जाता है। और यदि उसको क्षायिक मानते तो सिद्धों के सर्व कर्म का क्षय होने पर योग का सद्भाव होना चाहिए था, वैसा पाया नहीं जाता है, इसलिए योग क्षायिक नहीं हो सकता, एक बात। फिर कहते योग पारिणामिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर क्षायिक मानने से उत्पन्न होने वाले समस्त दोषों का प्रसंग आता है। यदि योग को हम पारिणामिक भाव मानते तो सिद्धों में भी वो चालू रहना चाहिए था, परंतु वैसा तो नहीं देखने में आता। फिर कहते योग औपशमिक भी नहीं है, क्योंकि औपशमिक भाव से रहित मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में योग के अभाव का प्रसंग आता है। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में भी योग है, और मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में कोई औपशमिक है नहीं है भाव, ख्याल है ना? इसलिए यदि योग को औपशमिक मानेंगे तो मिथ्या तो गुणस्थान में वो योग नहीं हो सकता, परंतु वो होता है। अब कहते हैं योग घाती कर्मों के उदय से उत्पन्न भी नहीं है। घाती कर्मों वाला जो औदयिक भाव है, घाती कर्म यानी ज्ञानान दर्शनान मोहिनी अंतराय, इनके उदय के कारण भी योग नहीं होता, क्योंकि सहयोगी केवली में घाती कर्मों का उदय क्षीण होने पर योग के अभाव का प्रसंग आता है। एक एक को रूल आउट कर रहे, सहयोगी में योग है कि नहीं है? है। घाती कर्म है कि नहीं है? नहीं है। यदि घाती कर्म के उदय के कारण योग होता तो सहयोगी में नहीं होना चाहिए था, परंतु सहयोगी में पाया जाता है, इसलिए घाती कर्मों से भी कुछ उसका लेना देना नहीं है। घाती कर्मों के उदय से होने वाले जो औदयिक भाव है वो भी योग उसके कारण नहीं हो सकता, बरोबर। अब कहते हैं आघाती कर्मों के उदय से उत्पन्न भी नहीं है। आघाती कर्म है इसलिए योग है, ऐसा अगर कहेंगे तो चौदहवें वाले को भी होना चाहिए था, क्योंकि वैसा मानने से अयोगी केवली में भी योग की सत्व प्रसंग आता है, योग के सत्व का प्रसंग है, ठीक है, बराबर। अब कहते योग घाती कर्मों के क्षोभशम से भी उत्पन्न नहीं है, क्योंकि इससे भी सहयोगी केवली में तथा अयोगी में क्षायोपशमिकी योग के अभाव का प्रसंग आता है। यदि क्षायोपशम भाव होता, योग क्षोभशम भाव से होता, तो अरहंत में कोई क्षोभशम भाव नहीं है, तो उनमें योग का अभाव होना चाहिए था, इसलिए क्षोभशम भाव से भी नहीं होता है। अब कहते योग आघाती कर्मों के क्षोभशम से भी उत्पन्न नहीं होता, क्यों नहीं होता? आघाती कर्मों के आघाती कर्मों में कोई क्षोभशम नहीं होता क्योंकि क्षोभशम तो सर्वघाती देशघाती पर ही घटित होता है, बराबर। क्योंकि आघाती कर्मों में सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार के स्पर्धकों का अभाव होने से क्षोभशम का भी अभाव है। यह सब विकल्प यानी पॉसिबिलिटीज मन में विचार कर पूछा गया है। ये क्यों पूछा है उसकी बात चल रही है कि जीव मनोयोगी, वचन योगी और काय योगी किस कारण से होता है। हाँ, पहले ये सूत्र नहीं है, हाँ इसीलिए मैंने बोला ये बीच में कैसा प्रश्न आया। देखो हम सूत्र पहले पढ़ना पड़ेगा, ये सूत्र का अर्थ नहीं लिखा है 32 वाला, ये शंका के पहले सूत्र लिखो, जोगानुवादेन मनोजोगी वचीजोगी कायजोगी नाम कदम भवति, यानी योगानुवाद से, योग मार्गानुसार, योग मार्गानुसार जीव मनोयोगी वचन योगी काय योगी किस कारण से होता है? और उसके आगे 32 लिख देना। हाँ प्रश्न चिन्ह, मैंने वही, मैं भी जरा घोटाले में पड़ गई, योग कहाँ से लाया। ये प्रश्न क्यों पूछा है, कौन सा भाव उसमें घटित करना है, उसकी बात अभी हम कल देखेंगे। प्रश्न तो ख्याल में है ना उसका, इसका उत्तर कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोका